Welcome to the 10th session of ThinkFest Conversations. This is a series of conversations in which we have endeavored to bring to you thought leaders in various disciplines across the board. We are not shy of controversy. And today, our speaker is an especially eminent personality of our era. He is none other than Javed Ahmed Bhamidi Sahab, who more than anyone in the recent history of Islam in South Asia and beyond, has raised questions that are fundamental in nature and has taught us and is inviting us to approach religion, approach Islam in a manner that now has to be declared unique. But it is not something that is entirely new. As Ahmadi Sahab reminds us, what he is inviting us to is really the original essence of Islam. And that is why we've chosen to title our talk today, The Recovery of Islamic Thought. And the conversation that we will carry out today will endeavor to bring out the salient features of Javed Ahmadi Sahab's thought that has led him to conclusions that many of us find surprising, but also comforting. And there is an epistemology at the heart of Javed Saab's approach to religion that we feel needs to be understood and engaged with. So I will now commence my conversation with Javed Saab, and we will be talking smoothly. Thank you. Javed Saab, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Now, main apni zaati aapko जो है पेश करना चाहूंगा सलाम अपना जो मेरा एक सब एहसास है मैं बिल्कुल मैं कहूंगा दबा चला जा रहा हूँ कि मुझे खुशी है और मेरे लिए साबित का होना ये लम्हा है कि आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है मुझे वो तमाम लम्हे घड़ियाँ जो 2001 से 2003 तक आपके मॉडल टाउन सेंटर में आपके साथ गुजारने का मौका मिला वो एक सैलाब की तरह जहन से गुजर रही है और उस अरसे से आज दिन तक के सिल दौरानिये में जो सफर आपने तय किया आपकी सोच ने तय किया और हमारे एक इज्तमाही कौमी दायरे ने तय किया वो तमाम मैं समझता हूँ एक ऐसा सफर है जिसपे आपकी एक एक छाप मौजूद है एक इर्तका का सफर है आपसे हमने सीखा आज माशरे में एक जो मकालमा जारी है दीन के हवाले से उसका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सबक आपकी जात और आपकी फिक्र तो बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने का
मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इस तालिब इल्म की इज्जत अफजाई फरमाई बस तालिब इल्म हूँ तालिब इल्मों में बैठ के बहुत मसरत होती है आपके बारे में भी हमेशा मेरी राय यही रही है कि आप सच्चाई के सच्चे तालिब हैं और इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती
बहुत शुक्रिया जावेद साहब हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करती हैं और अगर मुझे आप इजाजत दें मैं अल बयान में जो आपने मुकदमा पेश किया है उसकी चंद सुतूर पढ़ना चाहूंगा और ये आपकी मार्फत उदारा आपकी आपका तर्जुमा है कलामुल्लाह का और उस तर्जुमे के शुरू में आपने अपनी फिक्र का एक तरह से मैं कहूँगा खुलासा पेश कर दिया है चंद सुतूर में पढ़ता हूं अपने मजमून के लिहाज से कुरान एक रसूल की सरगुज़श्ते अंजार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मालूम है कि आप नबूवत के साथ रिसालत के मंसब पर भी फाइज थे अल्लाह ताला जिन लोगों को खल्क की हिदायत के लिए मबूस फरमाते हैं और अपनी तरफ से वही और इल्हाम के जरिए से उनकी रहनुमाई करते हैं उन्हें नबी कहा जाता है लेकिन हर नबी के लिए जरूरी नहीं है कि वो रसूल भी हो रिसालत एक खास मंसब है जो नबियों में से चंद ही को हासिल हुआ है कुरान में इसकी तफसीलात के मुताबिक रसूल अपने मुखातिबीन के लिए खुदा की अदालत बनकर आता है और उनका फैसला करके दुनिया से रुखसत होता है कुरान बताता है कि रसूलों की दावत में यह फैसला अंजार आम इतमाम हुज्जत और हिजरत व बरात के मराहिल से गुजर कर सादिर होता और इस तरह सादिर होता है कि आसमान की अदालत जमीन पर कायम होती खुदा की दयनीयत का जहूर होता और उसूल के मुखातिबीन के लिए एक क़यामत सुग़रा बरपा हो जाती। यहाँ मैं तौक़ुफ़ करता हूँ। जो सवालात ज़हन में उठते हैं आपकी फिक्र के हवाले से, पहला सवाल यही रसूल की अदालत के हवाले से, कुछ वजाहत फरमाइए कि रसूल की अदालत का जो तसव्वुर हमें आपके यहाँ मिलता है वो आप कहाँ से अख़ज़ करती हैं, और उसके हवाले से जो आप कलाम अल्लाह की और दीन की ताबीर पेश करती हैं वो कुछ हमारे नाज़रीन और सामईन के लिए बयान करना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सबसे अहम सवाल है जिससे आपने इस नशस्त की इब्तिदा फरमाई है, और नज़दीक के किसी तालिब इल्म के लिए सबसे पहली चीज यही तय करने की होती है कि ये कुरान किस नौईयत की किताब है। अरे हाँ, आमतौर पर लोग इस सवाल को समझे बगैर जब कुरान खोलते हैं तो बहरहाल उनकी समझ ही में नहीं आता, इसलिए मैंने इब्तदा ही में कुरान का तारुफ लिखते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई है और फिर इसी बुनियाद पर अपनी तफसीर अल बयान का ये मुकदमा लिखा है। आपने पूछा है कि ये बात कैसे मालूम हुई, इसका एक सादा जवाब तो ये है कि पूरे कुरान मजीद में यही बात बयान हुई है। कुरान की हर हर सूरा, कुरान का हर बाब, कुरान की हर बहस इसी महवर के गिर्द घूमती है। ये तो एक उसूली बात है, लेकिन कुरान मजीद ने इसको मुख्तलिफ जगहों पर बतौर उसूल खुद वाज़ेह भी कर दिया है। चुनाचे सूरह यूनुस में फरमाया है कि वले कुल्ले उम्मतिर रसूल फैजा जा रसूलहुम कुज़िया बैनहुम बिलकिस्त। एक दौर में, हर गिरोह में, हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल भेजा जाता रहा है, और जब उनका रसूल उनके पास आ जाता था तो उस कौम का फैसला कर दिया जाता था। कुज़िया बैनहुम बिलकिस्त, इंसाफ के साथ इसी दुनिया में उनका फैसला कर दिया जाता था। वह हम ला युज़लमून, और उन पर कोई अदना जुल्म भी नहीं किया जाता था। ये कुरान ने बतौर उसूल सूरह यूनुस में बयान किया है। फिर मुतअद्दद मकामात पर इस बात की वजाहत की है, मसलन किसी मकाम पर यह कहा है कि मैंने ये फैसला कर रखा हुआ है कि ला अगले बन्ना आना व रसुली, कि मेरे रसूलों को लाजमन उनकी मुखातब कौमों पर गलबा हासिल होगा। कहीं ये बयान किया है कि वो लोग जो रसूलों के मुकाबिल में आएंगे वो लाजमन जलील और रुस्वा होकर रह जाएंगे। फिर इसी बुनियाद के ऊपर कुरान मजीद में एक पूरी सूरा है जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो अदालत बरपा हुई थी उसका फैसला सुनाती है, वो सूरह तौबा है। और मैंने बताया है कि इस सूरा पर कुरान की हर सूरा के शुरू में लिखे जाने वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के हुक्म से नहीं लिखी गई। उसकी वजह यह है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर अजाब की सूरा है, उसमें उस अजाब की पूरी तफसीलात बयान हुई है। यहाँ तक के मैंने ये तवज्जो दिलाई है कि सूरह तौबा गोया क़यामत का नमूना बन गई है। ये क़यामत सुग़रा जो यहाँ बरपा हुई, एक छोटी क़यामत बड़ी क़यामत को उससे समझाने के लिए उसके तमाम पहलू सामने आ गए हैं। यानी मुशरिकीन के साथ क्या मामला किया जाए, जो लोग असलम तौहीद को मानते हैं उनके साथ क्या मामला होगा, वो लोग के जो मुनाफिक हैं उनके साथ क्या मामला होगा, वो लोग के जिन्होंने खलतु अमलन सालेहन व आखरा सैया, जिन्होंने अच्छी बुरी बातें मिला के जिंदगी बसर की है, नेकी भी की खराबियां भी मुबतला होते रहे, उनके साथ क्या मामला होगा, वो जो कोई बड़ी गलती कर बैठे जिसकी नौईयत अल्लाह ताला के फैसले से इख्तलाफ की थी, उनके लिए माफी की क्या सूरतें होंगी। तो पूरी सूरा गोया एक लिहाज से एक छोटी क़यामत की तस्वीर बन गई है। तो ये सब चीजें हैं जिनको अगर दिक्कत नजर के साथ आप कुरान का मुताला करें तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। हम असल में आदी हो गए हुए हैं कि कभी कुरान मजीद खोला, उसमें अपनी मर्जी से कोई आयत निकाल ली, या किसी हदीस को पढ़ा उसके मुताबिक कोई आयत देख ली। कुरान को जब आप कुरान की हैसियत से पढ़ते हैं और उसके अंदर उतरते हैं तो वो पूरा का पूरा इसी सरगुजश्त को बयान करता है।
या तशरीह करूं, जो बात समझ में आती है आपकी फिक्र के हवाले से वो ये है कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में, वो जो एक हुजूर की जिंदगी का दौर है, एक अदालत पर बरपा की, उस अदालत में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच मारके हुए, और उस अदालत का मकसद था हजीमत पहुंचाना गैर इस्लाम को और इस्लाम को कायम करना सरजमीन पर। लेकिन उस दौर के गुजर जाने के बाद जो अब हम आम मुसलमान हैं और जो आज के दौर के मुसलमान हैं, उनका जो रिश्ता है बाकी तमाम आलम के साथ, तमाम दुनिया की अवाम के साथ, वो एक मार्के में बरसरे पैकार फरीकैन का रिश्ता नहीं है। अब हमारा रिश्ता जो है दाई और मधु का रिश्ता है, एक सुलह का रिश्ता है। क्या ये सोच मेरी दुरुस्त है आपकी फिक्र के हवाले से?
जी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। यानी अल्लाह के रसूल जब जमीन पर होते हैं तो वो भी पैदा यहीं से करते हैं, दावत देते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं। लोग अगर सुलह के साथ रहना चाहें तो उनके साथ बातचीत करते हैं, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मीसाक मदीना लिखा, एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी, लेकिन उसमें हुज्जत तमाम हो जाती है, अब हर बात पे वाजे हो जाता है, तो फिर जुड़ाव सुबह का फैसला होता है। मामले में होता है आप कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में सूरह आराफ को खोल लें, छोटी सूरतों में सूरह कमर को खोल लें, तो एक पूरा का पूरा मुकदमा है जिसको कुरान मजीद एक एक रसूल का जिक्र करके बयान करता है कि हमने लू कौम के साथ ये किया, हमने साले की कौम के साथ ये किया, हमने कौम के साथ ये किया। जैसे कि सूरह कमर में सब कौमों का जिक्र करके आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन यानी कुरैश से कहा है कि आप कुफारकुम खैरुम मिन उलाएकुम, यानी तुम जो लोग इस पैगंबर का इंतजार करेंगे क्या ये सबसे बेहतर है कि इनकी गिरफ्त नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल तो जलाओ सदा बर्फा करते हैं, कहा जाता है ये जो मारे के यौम दीन में लफ्ज दीन है उससे यह सजा, तो पैगंबर के काम करते हैं मुनकरीन के इस्तेसाल या उनके खात्मे या उनकी महकूमी के नतीजे में होता है। एक अलग कानून है, जिस वक्त बाकी कौमों के पास हम जाते हैं तो हम दाई हैं, हमारे पास एक पैगाम है, हम वो लेके जाएंगे, वो सब हमारे भाई हैं, उनको हम पैगाम पहुंचाएंगे, ये पैगाम शाइस्तगी के साथ तहजीब के साथ पहुंचाया जाएगा, इंसानियत की सतह पर बरादराना ताल्लुकात होंगे उसमें पैगाम दिया जाएगा, और यही ताल्लुक अब कयामत तक हर मुसलमान का है, दाई और मधु का ताल्लुक। यानी हमारे पास एक मैसेज है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से मगरबी कौमों ने अगर साइंसी उलूम में कोई गैर मामूली इक्तिशाफात किए हैं तो उनके पास भी एक मैसेज है, तो वो अपना मैसेज हमें पहुंचाएं, हम अपना पैगाम उनको पहुंचाएं, ये पैगाम इल्म और फिक्र की सतह पर जेर बहस आएंगे, इनकी तरफ लोगों को दावत दी जाएगी, इन पर मुकालमे का दरवाजा खुला होगा। इसमें न किसी जंगो जदाल का सवाल है, न किसी को मारने पीटने का सवाल है, यही ताल्लुक है जो अब क्यामत तक हमारे लिए तय कर दिया गया है, दोस्ती मोहब्बत दाई और मधु। इल्ला ये कि किसी जगह कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, वो दुनिया में कौमों के दरमियान आती रहती है, उसमें भी हमें पाबंद किया गया है कि हम तलवार उस वक्त उठाएंगे, बंदूक उस वक्त उठाएंगे जब जुल्म उद्वान और ज्यादती का खात्मा करना हो और तलवार या बंदूक उठाए बगैर कोई चारा न रहे। यानी जंग अब सिर्फ जुल्म और उद्वान के खिलाफ हो सकती है, और इसमें भी मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं, यानी कहीं भी जुल्म होगा हमारे पास ताकत होगी और हम उस जुल्म का खात्मा कर सकते हैं, तो हमें हमारे दीन ने हक दिया है कि हम जालिम का हाथ पकड़ें और मजलूम की मदद करें।
जावेद साहब, ये फिक्र आपकी जो है, जाहिर है आपको एक मुख्तलिफ जगह पे ला खड़ा करती है उस फिक्र के मुकाबले में जिसने अकामते दीन को आम मुसलमान की जिंदगी का महवर करार दिया। और जाहिर है मैं इशारा कर रहा हूँ हमारे हालिया दौर में मौलाना मौदूदी साहब हुए, उनके बाद डॉक्टर इसरार अहमद हुए, इन सब की सोच फिक्र ये थी कि अकीमुद दीन या अकामते दीन जो है ये एक आम मुसलमान की जिंदगी का भी नस्कुल ऐन होना चाहिए। और इसकी मजीद ताबीर ये की गई कि अकामते दीन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब कुराने पाक को लेकर जब तक हम उठे ना और दुनिया पर गलबा पाने की कोशिश ना करें। गलबा इस्लामी का एक तसव्वुर जो है वो उभरा 20वीं सदी के दौरान। तो यहाँ एक फिक्र हमारे सामने आती है जिसमें इस्लाम हमें बरसरे पैकार नजर आता है और पेहम बरसरे पैकार नजर आता है। और ये बताया गया हमें कि हमारा ताल्लुक जो है गैर इस्लाम के साथ दोस्ती का नहीं हो सकता। कुरान पाक की आयत अक्सर डॉक्टर इसरार दोहराया करते थे कि नसारा और यहूद के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती, और उसको वो एक अबदी हुक्म के तौर पे पेश किया करते थे। उनकी फिक्र का मैं समझता हूँ एक बड़ा हिस्सा इस नजरिए पर मबनी। तो ये एक जो फिक्र हमारे सामने आई इससे बहुत से लोग मरूब भी हुए, इसकी तरफ रागब भी हुए। इससे लोगों को ये लगा कि अब एक आम इस्लाम को भी, एक आम मुसलमान को भी एक बलबले से भरी हुई जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। वो अकामते दीन के लिए सरगर्दा रहे पूरी उम्र, तहरीक का हिस्सा बने और एक इनकलाब जो है उसका दाई बने। तो ये एक बहुत दिलफरेब, ये एक तरह से एक सोच है। लेकिन आपके नजदीक ये सोच जो है अब गालिबन मुसलमान की जो एक दीन के साथ जो एक रिश्ता है उसके लिए जरूरी नहीं है। दीन का मकसद आपके नजदीक गालिबन तज़किया नफ्स है, जबकि ये तमाम मामलात जो हैं ये तज़किया नफ्स से जुड़े हुए नहीं है। ये उमूमी जो एक तारीख का एक सफर होता है उसमें रियासतें बनती हैं, रियासतें बिगड़ती हैं, तारीख अपने मोड़ मुड़ती है। इन तमाम बातों का ताल्लुक गालिबन आपके नजदीक उन चीजों से है, तज़किया नफ्स और दीन के जो अहदाफ हैं उनसे नहीं है। फरमाइए।
यहाँ भी आपने बहुत सही खुलासा कर दिया बात का। कुरान मजीद ने जब अल्लाह के रसूल की बेसत का जिक्र किया है और 3-4 मकामात पर किया है, तो उसमें बताया है कि अल्लाह के रसूल क्या करने के लिए आते हैं। उसमें ये कहा गया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। वो अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि लोग पाकीज़गी इख्तियार करें। वो उनका तज़किया करना चाहते हैं और तज़किये के लिए वो दो चीज़ों की तालीम देते हैं, एक हिकमत यानी दीन की बुनियाद, दीन का फलसफा, ईमान, अखलाक, और दूसरे किताब यानी शरीयत, कानून। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की बेसत को वाज़े करते हुए जिस चीज़ को हदफ और मकसूद की हैसियत से बयान किया वो तज़किया है। आप एक और जगह पर देखिए कि जहां अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने तो तुम्हें जब पैदा किया तो तुम्हारे नफ्स का तस्विया करके, उसको हर लिहाज से दुरुस्त करके, बना संवार कर, उसमें खैर और शर का शऊर इल्हाम कर दिया। फअल्हमहा फजूराहा व तकवाहा व नफ्सिन व मा सब्बाहा फअल्हमहा फजूराहा व तकवाहा। उसमें आगे क्या कहा है, कद अफलह मन जक्काहा व कद खाब मन दस्साहा। जिसने नफ्स को आलूदा किया वो बर्बाद हुआ, और जिसने नफ्स का तज़किया किया, उसको पाकीज़ा बनाया, वो कामयाब हो गया। तो दीन का मकसद तो तज़किया है। इसमें तो कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े है, जगह जगह इसकी तालीम देता है। अलबत्ता बहुत सी चीज़ें हैं जो इस दीन के बारे में अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि देखो, जब तुम इस दीन को इख्तियार करते हो तो एतसमु बिहब्लिल्लाह जमीया, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रस्सी कुरान है। तो कुरान मजीद को मजबूती से थाम कर रखने की इस बलीग उसलूब में तालीम दी। ऐसी ही एक ताबीर है इकामत दीन, सूरह शूरा में ये ताबीर आई है। آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بات کیا بیان کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, کہ ہم نے اب پیغمبر آپ کو وہی دین دیا ہے جو سب پیغمبروں کو دیا تھا, نوح کو دیا تھا, ابراہیم کو دیا تھا, موسیٰ و عیسیٰ کو دیا تھا علیہ السلام. اور سب کو کیا نصیحت کی تھی اس دین کے بارے میں؟ ان اقیم الدین, کہ اس دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو. یہ بالکل اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت اے تسمو بحبل اللہ ہے, کہ یہ دین کیوں دیا گیا ہے. اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو اٹھا کے ایک جانب رکھ دیں, جیب میں ڈال کر پھرتے رہیں. یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اسے اختیار کیا جائے, اس کو پوری طرح اپنی زندگی کا دستور بنایا جائے, اس کو قائم رکھا جائے زندگی میں. یہ مطلب ہے اقامت دین کا. یہی مطلب تمام سلف کے علماء نے اس سے سمجھا ہے. اس پر بہت تفصیلی گفتگو میں نے اپنی کتاب برہان میں کی ہے. اس سے پہلے مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب تعبیر کی غلطی میں کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے علم کے لیے اقامت دین کا یہ مطلب کہ آپ دنیا پر چڑھ دوڑیں اور دین کا غلبہ قائم کر لیں, یہ دور حاضر میں بعض لوگوں نے پیش کیا ہے. ہمیشہ سے اس کا مطلب یہی سمجھا گیا کہ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو, دین پر عمل پیرا ہو جاؤ, دین پر قائم ہو جاؤ, دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو. یہ دین کو اپنانے کی تلقین ہے. اور آگے کہا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, اس میں فرقے بندیاں نہ برپا کرو, تفرقہ نہ برپا کرو, سب مل کر اللہ کے اس دین کو اختیار کرو. دین کو اختیار کرنا, آپ دیکھیے بالکل یہی تعبیر جو ہے نماز کے بارے میں ہے. اقیم الصلاۃ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک ہاتھ میں لٹھ پکڑو اور لوگوں کو نماز پڑھو. اس کا مطلب ہے نماز کو اختیار کرو, نماز کا اہتمام کرو, نماز پر قائم ہو جاؤ, نماز کو اپنی زندگی بنا لو. یہ مطلب ہے. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے. تو اقامت دین کے معنی در حقیقت یہ ہے. مسلمانوں کے ہاں ہوا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا. دنیا کی سلطنتیں الٹ گئیں, دنیا کی بڑی طاقتیں زمین بوس ہو گئیں. یہ معمولی واقعہ نہیں تھا. صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ ان علاقوں میں اہل کتاب کو محکوم بنا کے ان سے جزیہ لیں. ظاہر ہے کہ یہ اسی کا حصہ تھا جو جزا و سزا کا معاملہ اللہ کی طرف سے آخری رسول کی بعثت کے نتیجے میں ہوا. اس کو ہم نے عام سمجھ لیا. میں نے اس پر ایک تبصرہ کیا تھا کہ نبوت بھی ختم ہو گئی, رسالت بھی ختم ہو گئی. بعض لوگ نبوت کو ختم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور بعض لوگ رسالت کو ختم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں ہی ختم ہو چکی ہیں. نہ اب کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا. لہذا نہ وحی کی باتیں قرآن میں پڑھ کے اور نبیوں سے متعلق آیتوں کو پڑھ کے ان کا اپنے اوپر اطلاق کرنا چاہیے, اور نہ رسولوں کے بارے میں اس قانون کی پیروی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. چنانچہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے, اگر ہر طرح کے تعصبات الگ کر کے ایک طالب علم کی طرح پڑھا جائے, کہ اس میں ایک پوری کشمکش کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. اس کشمکش میں قریش سامنے ہے, مدینے میں آنے کے بعد اہل کتاب یہود سامنے ہے, نصارہ بھی بڑی حد تک متعلق ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات ہیں, روابط ہیں, بازاروں میں جانا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا, یعنی پہلے معاہدے کیے گئے, بیٹھے آپس میں, ملے ایک دوسرے کے ساتھ, مل کر کام کیا. لیکن جب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے رسول کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا, بلکہ معاند بن کے کھڑے ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتانا شروع کیا کہ اب عذاب آنے والا ہے, اب خدا کا آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے. اس فیصلے سے پہلے ان کے ساتھ تمام تعلقات توڑ لینے کی ہدایت کی گئی. یہ اس سرگزشت کا ایک مرحلہ ہے. اس مرحلے کی آیتوں کو وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر پوری دنیا تک لے آئیں, تو یہ قرآن کو اس کے کانٹیکٹ اور سیاق و سباق سے الگ کرنا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید میں اس مضمون کے مختلف مقامات دیکھیں, تو وہ خود وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو میں تعلقات توڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے ہے کہ اب یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کے تعلقات توڑنے کو کہا جا رہا ہے, لیکن اگر ان میں سے کوئی معاند نہیں ہے, इनमें से कोई लड़ने के लिए आमादा नहीं है तो उनके साथ नेकी और खैर करना ये ममनू नहीं है। इसी तरह मजीद वजाहत करता है कि अगर मुसलमानों के मफादात का कोई मसला नहीं है तो फिर भी कोई हरज नहीं, ताल्लुक रखो, लेकिन ये अब अजाब की जद में है, अल्लाह के इन दुश्मनों को अब अपना दोस्त मत समझो। ये पूरी बात है जो कुरान ने उनके बारे में बयान की है और एक खास मौके के ऊपर उसी सरगुजश्त के हिस्से के तौर पर बयान की है। मैं इसी के एक दूसरे पहलू के बारे में आपसे अर्ज करता हूँ, वो कुरान मजीद का इब्तला और आजमाइश का कानून है। यानी कुरान ये कहता है कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें ये जो जिंदगी और मौत का कारखाना नजर आता है ये इसलिए बनाया है इसके खालिक ने, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे कि कौन अच्छा अमल करता है। तो पूरी दुनिया आजमाइश के लिए बनी है, मैं भी आजमाइश के जद में हूँ, आप भी हैं, हर शख्स का अल्लाह इम्तहान कर रहा है। और इम्तहान का उसूल क्या बताया है कि लियब्लुवकुम फी मा आताकुम, जितना इल्म दूंगा, जितनी सलाहियत दूंगा, जितना माल दूंगा, जो कुछ अपनी शरीयत पहुंचाऊंगा, जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो उसमें आजमाऊंगा। लियब्लुवकुम फी मा आताकुम, यानी जो मिलेगा उसी में इम्तहान होगा। तो ये इम्तहान कभी शुक्र का हो रहा है, कभी सब्र का हो रहा है, किसको दे के हो रहा है, किसी को लेके हो रहा है। बाज लोगों की पूरी जिंदगी शुक्र के इम्तहानी में गुजरती है और बाज की पूरी जिंदगी सबर ही के इम्तहान में गुजरती है। दसियों लोग हैं कि इब्तदाई जिंदगी में बड़ी मुश्किलात पेश आई, फिर अल्लाह ने बड़ी फराकी दे दी। बहुत से लोग हैं कि इब्तदाई जिंदगी में बहुत बीमारियां तकलीफें थी, शफा हो गई। बाज की इब्तदाई जिंदगी में बहुत अल्लाह की इनायतें करम जिस्म पर भी माल पर भी होता है, लेकिन आखिर में बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये आजमाइश गुनागुन पहलुओं से मुझ पर भी तारी है, आप पर भी तारी है। सहाबाए किराम को सूरह बकरा में बताया है कि तुम जिस मैदान में उतरे हो, यानी रसूल के साथियों की हैसियत से ये जो मारका हो रहा है, इसमें जिस तरह मुनकिरीन के लिए अजाब के मुख्तलिफ दर्जे हैं, तुम्हारी आजमाइश भी आम लोगों की तरह नहीं है। चुनाचे देखे क्या कहा, वल नब्ल वन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अनफुस वल अमवाल, यानी मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हें आजमाऊंगा और ये आजमाइश इन 7-8-10 सालों में होनी है। नब्ल वन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ, इसमें कुछ खौफ के मराहल आएंगे, कुछ भूख के मराहल आएंगे, कुछ नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वल समरात, कुछ जाने जाएंगी, कुछ माल जाएंगे, कुछ तुम्हारे बागात और खेतियां उगड़ेंगी। तो एक खसूसी आजमाइश का कानून है जो उनको लाजमन पेश आनी है। उसमें कसम खा के कहा है वला नब्लो वन्नकुम, हम हर हाल में आजमाएंगे, किसी सूरत में तुम इस आजमाइश से नहीं बच पाओगे। इसमें हमें क्या देखना है, ये बताया है कि ये देखना है कि अगर उनको हम सजा दे रहे हैं और तुम्हें दुनिया की बादशाही देने का फैसला कर रहे हैं तो क्या तुम आजमाइश में पूरे उतरते हो। चुनाचे फिर इसकी तफसील की है सूरह आले इमरान में। अब जरा इस आयत को सामने रखिए और मुझे बताइए कि क्या हम सब के साथ भी यही हो रहा है। हमारे लिए बिल्कुल अलग कानून है, उनके लिए बिल्कुल अलग कानून है। तो ये कुरान मजीद के वो असरार हैं कि जो बिल्कुल नुमाया है, लेकिन अफसोस ये है कि इन पे तदब्बुर करके, इनको उस तरह अंदर उतर कर हमारे यहाँ समझने की कोशिश कम हुई है। इमाम फराही का ये कमाल है कि उन्होंने कुरान मजीद के इन असरार को खोल दिया और ये बताया कि कुरान को ऐसे देखना चाहिए।
मैं यही बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं, आपकी तहरीरों से हमें ये मिलता है, आपके कलाम से भी मिलता है। मिसाल के तौर पे पर्दे के हवाले से बाज़ अहकाम उम्मुहातुल मोमिनीन के लिए मखसूस हैं, हुजूर की वफात के बाद शादी ना करने का, निकाह ना करने का हुक्म भी उन्हीं की जात से मुतल्लिक है, एक उमूमी हुक्म नहीं है। आप इसका तस्करा भी करते हैं अपनी तहरीर में और अपने बयानात में, और वही जो आपका एक बुनियादी एक नुक्ता नज़र है कि बहुत सी बातें उस दौर के लिए और हुजूर की जात और हुजूर से मुंसलिक लोगों के लिए हैं, उनका ताल्लुक बाकी तमाम मुसलमानों के लिए या बाकी अदवार से नहीं है। ये बात तो बिल्कुल आपकी फिक्र से वाजे हो जाती है। लेकिन इकामत दीन पर ही अगर मैं वापस आऊं, اگرچہ اقامت دین اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں ہر مسلمان نے اپنے حوالے سے پیدا کرنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں قانون کا تصور موجود ہے, شریعت کا تصور موجود ہے. اب جب کہ ایک مسلمان اکثریت کی ریاست پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو ظاہر ہے یہاں قانون سازی کی جانی ہے. اس قانون سازی کے لیے ظاہر ہے کہ رہنمائی جو ہے وہ قرآن اور سنت سے لی جائے گی. اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا, ہم وہ تو ضرور کریں گے, لیکن کیا آج بھی پاکستان بطور ریاست کوئی دارالاسلام ہے جس میں مسلمان اور ضمنی بستے ہیں, جہاں مندر کی تعمیر اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ دارالاسلام میں مندر کی تعمیر ممنوع ہے؟ تو ایک ریاست جو قومی ریاست ہے, یا کیا پاکستان قومی ریاست ہے یا نہیں ہے؟ اگر پاکستان قومی ریاست ہے تو اس کا پھر کیا تعلق ہے دارالاسلام کے تصور سے؟ ہم کیسے اپنی ریاست کو سمجھیں؟ یہ ہمیں قانونی طور پہ بھی, آئینی سطح پہ بھی ایک بہت بڑی دشواری ہے. ذہن میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے صاف نہیں ہے, ہمیں عدالتوں میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے آئین کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, ہماری ریاست کی ایک قسم کیا ہے, ہم کس نوعیت کی ریاست ہیں. کچھ رہنمائی فرمائیں.
ایک لفظ پچھلی بحث کے بارے میں کہہ دوں, یعنی اقامت دین کا جو مطلب میں نے واضح کیا, دین کو اختیار کرنا, دین کو اپنانا, دین کو اپنا دستور زندگی بنانا, تو اب اس میں اصل سٹریس جو ہے وہ اقامت پر نہیں ہوگا, دین پر ہوگا. دین میں ہے کیا؟ اگر دین میں صرف ایک نماز پڑھنے کا حکم ہے تو بس دین اتنا ہی رہے گا. آپ کو دین کی فہرست بتانی پڑے گی. اگر دین میں کوئی چیز ریاست سے متعلق کہی گئی ہے, حکومت سے متعلق کہی گئی ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی دین ہوگی اور اس کو بھی اختیار کرنا لازم ہوگا. پہلے یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. یعنی اقامت کے لفظ سے کوئی نئی بات نہیں سامنے آئی, وہ تو اختیار کرنا ہے. دو باتیں ہیں تو وہ اختیار کی جائیں گی, دس ہیں تو وہ کی جائیں گی. اگر صرف نکاح طلاق سے متعلق دین میں کوئی بات ہے تو وہ اختیار کی جائے گی. اگر اس سے آگے بڑھ کر عالمی سطح کا کوئی حکم ہے تو دین میں اس حکم کو ثابت کرنا ہوگا. یعنی وہ جب ثابت ہو جائے گا تو اقامت کے اندر وہ شامل ہو جائے گا آپ سے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے پاکستان میں کہ وہ اپنے آئین کی پابندی کرے, تو آئین کو اختیار کرنا, آئین کی اقامت کرنا, یہ جب کہا جائے گا تو آپ آئین میں بتانا پڑے گا نا. آپ تو اس علم کے ماہرین میں سے ہے کہ آئین میں وہ بات ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ریاست حکومت کے بارے میں اقامت دین کے اقامت سے کچھ نہیں ثابت ہوگا, دین کے کانٹینٹ میں آپ کو بتانا پڑے گا کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا. اب میں اس کا اطلاق کر کے آپ کو اس صورتحال کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے. میرے نزدیک پاکستان جب بنا تو ایک فرمان کے نتیجے میں بنا, اس سے پہلے مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں مسلمانوں کی نمائندگی کس نے کرنی ہے, ایک طویل جدوجہد میں اس کا فیصلہ ہوا. جمعیت علماء ہند بھی تھی, اس میں مجلس احرار بھی تھی, اور بھی بہت سی جماعتیں اور قوتیں تھیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کی نمائندگی قائد اعظم کی ذات میں مرتکز ہو گئی آہستہ آہستہ. یہ نہیں کہ سب اختلافات ختم ہو گئے, لیکن ان کی بڑی اکثریت نے ان کو اپنا نمائندہ مان لیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معاہدے کے نتیجے میں ہوا. یعنی چیزیں طے ہوئیں, مذاکرات ہوئے, یہ سب ہوا, تو وہ کیا چیز تھی جو اس وقت وجود میں آئی؟ میرے نزدیک وہ ایک نیشن سٹیٹ تھی, قومی ریاست تھی. نیشن سٹیٹس اور قومی ریاستیں یہ ایک لمبا عرصہ پہلے ہولی رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد یورپ میں پیدا ہو چکی تھی, اور یہ تصور آہستہ آہستہ دنیا میں آ رہا تھا. اس وقت دنیا بھر میں جتنی ریاستیں ہیں, خواہ ان میں بادشاہتیں قائم ہیں, خواہ ان میں منظم آمریت قائم ہے جیسے چین وغیرہ, خواہ ان میں جمہوری حکومتیں ہیں, سب جگہ ان ریاستوں کی نوعیت نیشن سٹیٹ کی ہے, قومی ریاستوں کی ہے. وہ اسی حیثیت سے ایک عالمی نظام کا حصہ بنی ہے, اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کر کے. قومی ریاست کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جغرافی خطے میں رہنے والے لوگوں کو ایک قوم قرار دے دیا گیا ہے. اب وہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں, उनके दरमियान हुकूक व फराइज में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। मैं जब पाकिस्तान को तमाम तासुबात से अलग होकर देखता हूँ तो वो एक कौमी रियासत की हैसियत से वजूद पजीर हुआ है। मैंने कायदे आजम की एक एक तकरीर को देखा है, उनकी सारी जद्दोजहद को पढ़ा है, वो एक कौमी रियासत नेशन स्टेट का मुकदमा लड़ रहे हैं और बिल्कुल उसी उसूल पर लड़ रहे हैं जिस उसूल पर हम आज कौमों के हक के खुद इरादी की बात करते हैं, यानी जिस उसूल पर हम मसलन कश्मीर के बारे में कहते हैं या किसी और जगह के बारे में कहते हैं कि अगर एक जुग्राफिया मौजूद है और एक कौम कौम की तारीख पर पूरी उतरती है, खा उसकी बुनियाद नस्ल है, खा उसकी बुनियाद मजहब है या कोई और चीज है, उस कौम को हक हासिल है कि वो अपनी अलग रियासत का मुतालबा करे। तो बिल्कुल इसी उसूल पर कायदे आजम ने ये रियासत का मुतालबा किया। यहां जाहिर है कि कौमियत की बुनियाद इस्लाम था, यानी मुसलमानों के लिए ये तकाजा किया जा रहा था कि वो हिंदुस्तान में अक्सरियत के नहाब के नीचे, इस्तीला और तगल्लुब के नीचे अपनी सकाफत और तहजीब की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, उनके लिए एक कौमी रियासत। लेकिन जो उसूल कायम किया गया वो ये नहीं था कि यहाँ रहने वाले मुसलमान हाकिम होंगे और उनके अलावा बाकी मजाहिब के पैरोकार उनके महकूम होंगे, या बर्र सगीर के दूसरे हिस्से में भारत में हिंदू हाकिम होंगे और उनके नीचे रहने वाले दूसरे मजाहिब के पैरोकार उनके महकूम होंगे। ये इस उसूल पर मुल्क नहीं बने, ये इस उसूल पर बने कि ये दोनों की दोनों रियासतें कौमी रियासतें होंगी, इनके तमाम शहरी बराबर के शहरी होंगे और ये बराबर के शहरियों की हैसियत से एक कौमी रियासत का नज्म कायम करेंगे। मैं पाकिस्तान को यहां से देखता हूँ। मेरे नजदीक इस मामले में कायदे आजम के यहाँ कोई कंट्रडिक्शन, कोई तजाद नहीं है। मैं उनके एक एक लफ्ज की वजाहत करने के लिए तैयार हूँ और इसी उसूल पर उन्होंने 11 अगस्त 1947 को वो तकरीर की है जिसमें उन्होंने इंग्लिस्तान में मजहबी कश्मकश का हवाला दिया है। आप अगर पूरी तकरीर पढ़े तो इंग्लिस्तान में जो कुछ कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान हुआ और जैसी आग और खून की होली खेली गई, उसका हवाला दे के उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी सीख लिया है, हमें भी ये सीखना है कि अब मजहब की बुनियाद के ऊपर रियासतों के नज्म में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग आजाद हो, मंदिरों को जाओ, मस्जिदों को जाओ, रियासत को तुम्हारे मजहब से कोई बहस नहीं होगी। तो मेरे नजदीक कायदे आजम का पूरा मौकिफ ये है रियासत की नौइयत के बारे में। अब उसके दूसरे पहलू पर आइए। दूसरा पहलू ये है कि उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जब मुसलमानों की अक्सरियत है और वो उस रियासत का नज्म चलाने का जमहूरी हक रखते हैं, यानी अक्सरियत के उसूल पर, जैसे हम ये कहते हैं कि जिस पार्टी को इख्तदार हासिल हो गया है, खा वो मुस्लिम लीग है या वो पीपल्स पार्टी है या वो तहरीक इंसाफ है, अगर उसको अक्सरियत की ताइद हासिल है तो उसको कानून साजी का हक है, उसको इस मुल्क में हुकूमत करने का हक है। इसी उसूल पर वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम जब इस मुल्क का नज्म चलाएंगे तो जिस तरह रिवाज से, उर्फ से, रसूम से, दुनिया के नज्म से, जमहूरी उसूलों से, दुनिया में जो कानून की डेवलपमेंट हुई है, खा वो वजी कानून है, फितरी कानून है, उन सब चीजों से हम मदद लेंगे, उसी तरह हमारा मजहब है वो इस्लाम है और हम इस्लाम की एक शरीयत रखते हैं तो उसकी रहनुमाई भी लेंगे, उस पर भी अमल करेंगे। ये मेरे नजदीक कायदे आजम का सादा मुकदमा था, यानी हम एक कौमी रियासत है, कौमी रियासत की हैसियत से हमारे यहाँ मजहब की बुनियाद पर लोगों में कोई तफरीक नहीं होगी, वो बराबर के शहरी हैं, आजादी के साथ अपने मजहब पर अमल करेंगे, रियासत कोई उनमें इम्तियाज नहीं बरतेगी। कानून की हैसियत से जब हम कानून साजी करेंगे, रियासत का नज्म चलाएंगे तो अपने मजहब की तालीमात पर अमल करेंगे और ये हमारा हक है कि हम अमल करें। मेरे नजदीक यही सही मुकदमा है। तो इस वक्त भी हम मुसलमान हैं, यहाँ एक बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है, उन्हीं की पार्टियां ज्यादातर यहाँ हुकूमत कर रही हैं, उनको हक हासिल है कि वो पार्लियामेंट में अक्सरियत रखते हैं तो वो जिस कानून को भी दुरुस्त समझते हैं उस पर बहस करें, वो मुबासा करें और उस कानून को अपनी जिंदगी बनाएं। इस्लाम के मुखातबीन की हैसियत अफराद को हासिल है, यानी रियासत तो कौमी है لیکن افراد مسلمان ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ ملکہ برطانیہ بھی اس وقت اگر برطانیہ کو آپ دیکھیں, یعنی آئینی ویسے چھوڑ دیں, ویسے تو وہ ایک مسیحی ریاست ہے اپنے پس منظر کے لحاظ سے, لیکن اس وقت ایک قومی ریاست کے طور پر کام کر رہی ہے. ایک تدریجی ارتقا وہیں لے آیا ہے ان کو. لیکن ملکہ برطانیہ اتوار کے دن چرچ ہی میں جائیں گی, مسجد میں تو نہیں آئیں گی نا جمعہ کے دن. تو اس وجہ سے جو بھی حکمران ہوں گے ان کا مذہب ہے, عمران خان صاحب کا بھی مذہب ہے, نواز شریف صاحب کا بھی مذہب ہے, قائد اعظم کا بھی مذہب تھا, تو اپنے مذہب پر عمل کریں گے جو مذہب کی ہدایات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے دین میں حکومت کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی. وہ ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا میرے نزدیک قیامت تک ضروری ہے, قیامت تک لازم ہے. اور وہ ہدایات, ایک ایک ہدایت کو آپ دیکھ لیں, وہ تو اللہ کی رحمت ہے دنیا کے لیے اگر لوگ ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور ان میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں غیر مسلموں پر, یعنی جو اسلام کو نہیں مانتے, کسی چیز کو لاگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی وہ سارے قوانین, ساری ہدایات مسلمانوں کے لیے. تو مسلمانوں کو ان پر اپنی انفرادی زندگی میں بھی عمل کرنا ہے, اجتماعی زندگی میں بھی عمل کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے, نیشنل سٹیٹ ہے, اس میں حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے, برابر کے شہری ہیں. یہاں مندر بھی بنیں گے, یہاں سینگاگ بھی بنیں گے. یہاں پر اگر کوئی حکومت کی سطح پر مدد کرنی ہوگی تو بغیر تفریق کے سب کی جائے گی. مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا, لیکن مسلمان حق رکھتے ہیں کہ وہ یہاں قانون بناتے وقت مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں جو اللہ نے ان کے لیے لازم کی. یہ خلاصہ ہے میری بات.
بحث پھر یہی کی جاتی ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں بت پاشی کی, ہدایت کی, بتوں کو توڑنے کی, اور اس سے یہ اصول, ایک ابدی اصول اخذ کیا جاتا ہے کہ اب ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ بنے ہوئے مندر کو تو چلے ہم نہیں توڑتے, لیکن نیا مندر نہ بننے دیں, کیونکہ حضور نے مندر نہیں بننے دیے تھے یا بتوں کو توڑا تھا. لیکن آپ کا پھر وہی مقدمہ سامنے آتا ہے کہ حضور کی ذات اور حضور کا جو دور زندگی تھا وہ ایک بڑا انفرادی نوعیت کا دور زندگی تھا, کیونکہ بطور رسول وہ عدالت برپا کر رہے تھے. آج ہم وہ عدالت برپا نہیں کر رہے. ہمارا تعلق جو ہے اس قومی ریاست کے اندر مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا, وہ ایک ریاست کے شہریوں کا تعلق ہے, جس میں کوئی ہمیں اب تفریق یا تمیز کرنے کی ہدایت نہیں ہے, ماں سوائے وہ چیزیں جن کا براہ راست تعلق دین سے. یہ بات غالباً آپ کا جو مقدمہ ہے, جو نقطۂ نظر ہے, اس سے ہمیں اخذ کرنی چاہیے.
جی, یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے خود بیان کر دی. یعنی آپ اگر دیکھیں تو آپ نے جزیرہ نما عرب کے بارے میں بالکل الگ احکام دیے ہیں, صحابہ کرام نے جزیرہ نما عرب میں بالکل الگ رویہ اختیار کیا ہے, باہر نکل کے بالکل الگ رویہ اختیار کیا ہے. تو جزیرہ نما عرب کے احکام اور ہیں. جزیرہ نما عرب کی تو پوری تاریخ اللہ تعالی نے سنائی ہے کہ اس علاقے کو میں نے منتخب کر لیا ہے, یہ میری توحید کا مرکز رہے گا, اس میں شرک کو مٹا دیا جائے گا, یہاں پر کوئی دوسرا دین زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ہے, لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, ایک ایک چیز کو الگ متعین کیا ہے. اس دور آخر میں مسلمانوں کے بڑے مفکر شاہ ولی اللہ نے ایک پورا باب باندھا ہے اس پر, جس میں یہ بتایا ہے کہ جزیرہ نما عرب کے احکام کیا ہیں اور باقی دنیا کے احکام کیا ہیں. تو باقی دنیا میں صحابہ کرام گئے ہیں, کون سے مندر انہوں نے ڈھائے ہیں اور کون سے انہوں نے بت خانے توڑ دیے ہیں. بامیان کے جو بت تھے وہ انہی کے زمانے سے کھڑے تھے, ابھی حال میں ہمارے اوپر کچھ غلبہ ہوا اور ہم نے ان کو توڑا ہے, کسی جگہ پر بھی یہ کام نہیں کیا گیا. صحابہ کرام کے ہاں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ باہر نکلے تو ان کے سامنے قانون اور تھا, وہ جزیرہ نما عرب میں تھے تو ان کے سامنے قانون اور تھا. اور یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے, جزیرہ نما عرب کے احکام وہی ہیں جو فلسطین کے احکام تھے. اور فلسطین کے احکام اگر آپ کو الگ سے پڑھنے ہوں تو آپ تورات میں کتاب استثناء میں ڈیٹرانومی میں 20-21 باب پڑھیے, بالکل وضاحت سے وہاں فلسطین کے بارے میں یہی احکام بیان. یعنی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا انتخاب کیا اپنے دین کے مرکز کے لیے. وہ کائنات کا خالق ہے, یہ اس کا انتخاب ہے اور اس کے رسولوں نے بتایا. اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا گیا. تو یہ بات ہمارے علم پر واضح ہے مسلمانوں کے, بدقسمتی سے اس علم کو کوئی پڑھتا نہیں ہے, وہ کتابوں میں بند ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ نکالیے, جہاد کا باب نکالیے, اس میں بہت صراحت سے وہ بیان کریں گے کہ اسلام کے احکام حجاز کے بارے میں کیا ہیں یا عرب کے بارے میں کیا ہیں اور باقی دنیا کے بارے میں کیا ہے. تو اس میں کوئی ادنا تردد کبھی کسی کو نہیں ہوا. اس دور میں بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اور اس کی ہدایت میں اس طرح تدبر نہیں کرتے, بلکہ اپنی علمی ٹریڈیشن سے بھی واقف نہیں رہے. اس وقت جو دین ہمیں بتایا جاتا ہے وہ متاخرین کا مرتب کردہ دین ہے. آپ اس کو شافعی, مالک اور احمد بن حنبل کے دور میں جب جا کے دیکھیں گے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آئے
گی. بہت شکریہ. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, تھوڑا سا وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے, لیکن اتنی سیر حاصل رہنمائی آپ سے آج حاصل ہو رہی ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. دوسرا جو بڑا موضوع آج جو میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا تھا وہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ پہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے, اور وہ ہے آپ کا حدیث کے جو ذخائر ہیں ہمارے سیاستہ اور دیگر جو ذخائر ہیں ان کے حوالے سے آپ کا جو ایک رویہ ہے, فکری رویہ. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ حدیث کو مانتے نہیں, آپ حدیث سے استدلال کرتے ہیں, آپ کی تحریر, آپ کی تفسیر ہر جگہ حدیث سے استفادہ کرتی ہے, لیکن احادیث کے جو ہمارے مجموعے ہیں ان کے حوالے سے آپ ایک مخصوص نقطۂ نظر رکھتے ہیں. اور یہ آپ کا جو مدرسہ ہے مولانا حمید الدین فرائی سے لے کر مولانا امین احسن اصلاحی اور پھر آپ, یہ غالباً اس مدرسے کا ایک عمومی رویہ ہے. اور اگر اس کی میں تلخیص کر سکوں تو میں شاید یوں کہوں گا کہ آپ لکھی ہوئی جو احادیث ہیں سنت سے ہٹ کر, سنت کے حوالے سے تو آپ کا رویہ یہ ہے کہ عمل کا جو تواتر ہے وہ سنت کو ثابت کرتا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, وہ عمل کے تواتر سے ہم تک بات پہنچ گئی. لیکن جو لکھی ہوئی احادیث کے ذخائر ہیں سیاستہ جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ عقلی ایک جو ایک جانچنے کا عمل ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اگر مجھے غلط یاد نہیں تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا, آپ نے ایک لیکچر کے دوران ایک مثال دی آپ نے بات سمجھانے کے لیے کہ سیاستہ کے ذخائر میں ایک حدیث موجود ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور مسجد نبوی میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے اس درخت سے ٹیک نہیں لگائی اور مجمع میں موجود حضرات کو تھوڑے عرصے کے بعد رونے کی آواز سنائی, اور جب معلوم کیا دیکھا تو پتا چلا کہ وہ درخت رو رہا ہے جس سے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک نہیں لگائی. اور یہ بات ایک ہی راوی کے ذریعے منتقل ہوئی اور احادیث کے جو ہمارے ذخائر ہیں ان میں اس نے جگہ پائی. آپ نے جو سوال اٹھایا اور جو آپ کی فکر کو ایک طرح سے واضح کرتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک تو معاملہ اتنا غیر معمولی نوعیت کا ہے جس کی بظاہر ہمیں دیگر مثالیں حضور کی زندگی میں نہیں ملتی, حضور کی زندگی ایک معجزاتی زندگی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایک مجمع عام میں ایسا واقعہ ہوا تو کیا وجہ کہ اس کی جو روایت ہے وہ صرف ایک راوی کے ذریعے آگے بڑھی, دیگر لوگوں نے گھر جا کر یا کسی احباب سے ملتے وقت اس غیر معمولی واقعے کا ذکر نہیں کیا. اور اس حوالے سے آپ یہ مقدمہ پیش کرتی ہیں کہ احادیث کے بھی جو ذخائر ہیں ان کو ہم نے پرکھنا ہے عقل کے معیار پر, اور کلام اللہ جو ہے وہ ہمارا بالآخر سٹینڈرڈ ہے, اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے چیزوں کو. اور اس حوالے سے جو آپ نتائج پھر اخذ کرتی ہیں حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے, وہ آپ کو جو ہماری روایت ہے جس کو اجماع بھی کہا جاتا ہے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی, اور کہا یہ جاتا ہے, تنقید یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے اجماع امہ جو ہے اس سے انحراف کیا. اس حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟
میں پہلے تو یہ گزارش کر دوں کہ حدیث کی نوعیت کیا ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, मुसलमानों का आला दर्जे का सारा इल्म हदीस को इसी जगह रख कर देखता है। यानी पहली चीज ये है कि हमारे पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की दी हुई सबसे बड़ी चीज कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। ये बिल्कुल मुनज्जम सूरत में तरतीब के साथ हमें दी गई है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस तरह दी? क्या किसी एक आदमी ने कोई एक नुस्खा लेकर हम तक पहुंचाया है? रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान पढ़कर सुनाया। हजारों की तादाद में सहाबाए किराम ने इसको सुना। सुनने के बाद लिखने वालों ने लिखना शुरू कर दिया, याद करने वालों ने याद करना शुरू कर दिया। ये इजमा और तवातुर से मुंतकिल होना शुरू हो गया। तवातुर का मतलब ये होता है, और ये मेरी कोई वजा की हुई इस्तला नहीं है, ये मुसलमानों के जलीलुल कदर अहले इल्म की वजा की हुई इस्तला है। तवातुर का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी तादाद किसी चीज को अपने कौल से या अपने फेल से मुंतकिल कर रही है कि उसके झूठ पर जमा होना अकलन मुहाल है। और इजमा का मतलब यह है कि किसी गिरोह का पूरा इल्म पहले दिन से उसकी शहादत दे रहा है। तो कुरान इस तरह मुंतकिल हुआ। इस वक्त बड़े इत्मीनान के साथ लोग कहते हैं कि कुरान वो है जो मा बैनत दुफतैन है। अरबी में इसका मतलब है दो गत्तों के दरमियान। तो क्या हर चीज जो दो गत्तों के दरमियान होती है वो कुरान हो जाती है? यानी वो कुरान जो अंदर है उसकी शहादत मुसलमानों का इजमा और तवातुर है, वो उसकी सनद है। यानी मुसलमान हर दौर में इस बात की गवाही देते रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है, और इसी हैसियत से एक नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल कर रही है। सुन्नत भी ऐसे ही मुंतकिल हुई है। नमाज, रोजा, तमाम इबादात, हज, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, ये हज पहले से जारी है। रसूलुल्लाह सल्लम अपनी बेसत से पहले भी इसी तरीके से हज कर रहे थे। ये सब कुछ तारीख में महफूज है। इसी तरह का मामला रोजे का है, इसी तरह का मामला बाकी इबादात, जिंदगी के आदाब जिनको हम सुन्नत कहते हैं, वो सब चीजें भी बिल्कुल उसी तरह मुंतकिल हुई हैं जिस तरह कुरान मुंतकिल हुआ है। सिर्फ इस फर्क के साथ कि यहाँ पर एक किताब की सूरत में उसको नकल किया जा रहा है, वहां एक अमली रवायत की हैसियत से उसको नकल किया जा रहा है। लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से रुखसत हुए हैं। आपने कमो बेश अगर 2 हिजरी को भी मान लें कि रमजान के रोजे फर्ज किए गए, तो 8 साल रोजे रखे हैं हर रमजान में। ईदें पढ़ी हम पढ़ाई हैं। इसी तरह से आपने हज किया है, तो आपके साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आखिरी हज किया है। तो ये सारा दीन हमें इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुआ है। इसके बाद एक तीसरी चीज पैदा हुई जो बिल्कुल फितरी है। पूरा दीन इसी तरीके से मुंतकिल हुआ है, सारा दीन, लिहाजा बिल्कुल कतई है, उसमें किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। वो तारीख की एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुका है, वो एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है। इसके बाद एक तीसरी चीज है, वो हर जगह पैदा होगी। वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जे निस्बत खाकरा बा आलम पाक अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वो तो कायदे आजम के मामले में भी होगी, इकबाल के मामले में भी होगी, अबुलाला मौदूदी के मामले में भी होगी। जब भी कोई बड़ा आदमी होगा तो लोग उसकी बातें, उसके अफाल, उससे मुलाकातों की रुदात बयान करेंगे। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो रसूलुल्लाह की जिंदगी ही में बयान होना शुरू हो गया था। इसको हदीस कहा जाता है। ये बड़ा कीमती जखीरा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लम की सवाने जाननी हो, आपकी जिंदगी के हालात मालूम करने हो, आपके इल्म और अमल को जानना हो, यानी कोई कुरान के बारे में सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई सुन्नत के बारे में कोई बात की वजाहत कर रहे हैं, ये सब उसमें। सुन्नत हदीस में बयान नहीं होती, सुन्नत के बारे में चीजें बयान होती है। कुरान हदीस में बयान नहीं होता, कुरान के बारे में जो सवालात किए जा रहे हैं वो बयान होते हैं। मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया। यानी रसूलुल्लाह की सवाने, आपका उसवा हसना, कि आप जो दीन लेके आए थे, जो आपने कुरान सुन्नत के जरिए से दिया, खुद आप उस पर कैसे अमल करते थे, वो हदीस ही से मालूम होता है। यानी आपने सिखा दिया कि नमाज ऐसे पढ़नी है, लेकिन अब देखने वाले देख रहे हैं कि आप खड़े होते थे तो किस खुशू खुशू से खड़े होते थे, किस एहतमाम से नमाज पढ़ते थे। ये आपकी सीरत है, ये उसवा हसना है, ये सब हदीस से बयान होता है। तो बहुत कीमती चीज है, इसके इनकार का तो कोई जाहिल ही सोच सकता है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसको समझना कैसे है, ये जो आपने बात बयान की है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं कि मैं इसमें मुनफरद नहीं हूं। मुसलमानों के यहां जब ये इल्म शुरू हुआ तो इस इल्म की पहली किताब अल किफाया है खतीब बगदादी, उसके बारे में कहा जाता है कि इल्मे हदीस कुल्लुन अयानुन अलैह, ये गोया इसके ऊपर मबनी है सारा का सारा। उसका इक्तबास मैंने अपनी किताब मीजान में मबादी तदब्बुर हदीस के जेरे उनवान नकल कर दिया है। सराहत से कहते हैं कि हदीस जब हमारे सामने आएगी, ये चूंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये वो चीजें हैं जो लोगों ने बयान की हैं, इसको बयान करने वाला कहीं कोई एक आदमी है, कहीं दो, कहीं चार, कहीं दस, इस वजह से जरूरी है कि ये देखा जाए कि इसमें कोई बात कुरान के खिलाफ तो नहीं है, सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, इसमें कोई बात मुसलमानों के इजमाई अमल के खिलाफ तो नहीं है, इसमें कोई बात अकल आम के खिलाफ तो नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये उनका मुकरर करदा है, मुहद्दिसीन ने खुद इसी को बयान किया है। असल में होता यह है कि ये एक ख्याल पैदा हो जाता है, जैसे फुकहा के बारे में है कि दीन समझ लिया उन्होंने, अब हम उसमें क्या कर लेंगे। तो यहाँ ये है कि इस मेयार पर, इस क्राइटेरियन पर मुहद्दिसीन ने हदीसों को पूरा उतार लिया, अब हमने क्या करना है। इख्तलाफ यहाँ हो रहा है, ये नहीं है कि ये मैंने पहली बार कहा है। जिस वाक्य की आपने मिसाल दी है, दिलचस्प बात अर्ज करूं कि वो असल में इब्तदाई दौर के उलमाए अहनाफ की तनकीद है इस वाक्य पर। उन्होंने ये उसूल कायम किया कि अमूम बलवा, इसको इस्तलाह में कहते हैं अमूम बलवा। आप लोग तो कानूनदान हैं, इस्तलाहों से वाकिफ होते हैं कि कैसे पैदा होती हैं। अमूम बलवा का मतलब ये है कि, और ये अहनाफ की इस्तलाह है, हनफिया की, ये वो कहते हैं कि जब किसी वाक्य को अकलन सब लोगों को बयान करना चाहिए या ज्यादा लोगों को बयान करना चाहिए, एक आदमी बयान करे या दो करे तो फिर वो काबिले कबूल नहीं होगा। तो ये हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के उसूल है, ये हमारे मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, उलमा ने बयान किए हैं। चूंकि ये उलूम अब उस तरीके से लोगों के लिए मानूस नहीं रहे, इनका पढ़ना पढ़ाना उस तरह जदीद यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, तो इसलिए जो हमारे मजहबी लोग बाज़ बातें मुताखरीन के दौर की बयान कर देते हैं, वो समझते हैं कि यही दीन। मैंने इसकी मिसालें दी हैं बारहा कि ये सब तनकीदें हमारे यहाँ के जलीलुल कदर लोग करते रहे हैं। ये जो वाक्या आपने बयान किया, इस पर ये तनकीद मैंने पहली बार नहीं की, ये हमारे जलीलुल कदर अहले इल्म ने की है ये तनकीद, कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अनस की रवायत से इसको कबूल कर लिया जाए, जब वो खुद कह रहे हैं कि जुमे का वाक्या है। इतना गैर मामूली वाक्या एक आदमी के कहने पर कैसे माना जा सकता है। इसी तरह मसल मैं बाज और चीजें बयान करता हूँ। बुखारी में रवायत है कि एक बंदरिया ने बदकारी का इर्तकाब किया, बंदर मिलकर उसको संसार कर रहे थे। अब जाहिर है कि इस रवायत के ऊपर अकली तनकीद भी होगी, यानी क्या जानवरों के अंदर भी बदकारी होती है, क्या उनके बारे में वही कवानीन है, तो ये अकली तनकीद होगी। हजरत मूसा नहा रहे थे, पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया, मकसूद ये था कि उनकी कौम ये समझती थी कि उनकी शर्मगाह में कोई नक्श है तो ये वाजे हो जाए। तो जाहिर है कि इस तरह की जो रवायतें हैं उनके ऊपर अकली लिहाज से क्यों तनकीद नहीं की जाएगी। इसी तरह से कई मरतबा मैंने मिसाल दे के समझाया है कि आप मुस्नद अहमद को पढ़ें, उसमें जगह जगह ये रवायत आएगी कि लोग अपने बत्ती दिया रात को बुझा के सोया करें। आप पूरी रवायत पढ़िए तो बाहिर लगता है कि ये कोई दीन का हुक्म है, यानी औरतों को बाज़ औक़ात अपने घरों में भी अपने बच्चों के लिए कुछ रोशनी करके सोना होता है, छोटे बच्चे रात को उठते हैं, ये दीन का हुक्म है। आगे पता चलता है कि असल में बात ये थी कि हुजूर ने ये कहा कि भाई ऐसा होता है कि खैमों में सोए होते हैं, और अगर आप इसी तरह दिया जलता छोड़ देंगे तो कोई चूहा आएगा, वो उसके फतीले को पकड़ेगा तो आग लग सकती है। तो हदीसों में हुजूर की ज़ाती हिदायत होती हैं, आपके तजुर्बात होते हैं, उनमें से हर चीज को इल्म अकल के पैमाने पर जांचा जाएगा। तो ये हमारे मुहद्दिसीन जलीलुल कदर उलमा के कायम करदा उसूल है, इस इल्म को जिंदा करके लोगों को पढ़ाने समझाने की जरूरत है। आप दिलचस्प बात देखें, माफ कीजिए, दिलचस्प बात देखें कि मेरी किताब मीजान में हदीस के बारे में दूसरे सफे के ऊपर उसकी हुज्जत किस तरह कायम होगी, एक पैराग्राफ है, आप उसको निकाल के जब चाहे पढ़ सकते हैं। उसी मजमून में उसूल मबादी में आगे एक उन्वान है मबादी तदब्बुर हदीस, उसमें ये सब बातें मैंने बयान की हैं कि हदीस की सनद के क्या उसूल है, और बताया कि सब मुहद्दिसीन के यही उसूल है। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मुहद्दिसीन के उसूलों पर तहकीक करके ये कोशिश की कि इनकी कोई गलती समझ में आ जाए। मैं आज एतराफ कर रहा हूं कि इनकी किसी जगह पर कोई गलती नहीं, बहुत आला उसूल बनाया है। मैंने उसके बाद बताया है कि हदीस के टेक्स्ट और मतन को समझने के क्या उसूल है, उसमें मैंने मुहद्दिसीन की राय नकल करके उसकी वजाहत की है। फिर उसका खुलासा कर दिया है कि दो बातें हैं जो हदीस के मतन और टेक्स्ट में देखी जाएंगी, एक ये कि कोई चीज कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, कोई चीज इल्म और अकल के मुसलमात के खिलाफ ना हो। इसमें मेरी कोई मुनफरद राय नहीं है, जो मुनफरद पहलू है इस पे मैं आगे जाके बयान कर दूंगा। ये सब बातें हमारे इल्म की बातें हैं, एस्टेब्लिश बातें हैं, सब लिखी हुई हैं। इनका इतलाक करना मौजूदा दौर में ये लोगों ने छोड़ दिया, मैंने उस पर तवज्जो दिलाई। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये पूरा चैप्टर मौजूद है मबादी तदब्बुर हदीस। आप इस वक्त जितने लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं सब तनकीदें निकाल लें, ना उस पैराग्राफ को कोई पढ़ेगा ना मबादी तदब्बुर हदीस को कोई हवाला देगा। उसमें होगा क्या कि कुछ जुजवी दाएं बाएं की बातें जो है, एक जगह उन्होंने फरमाया है कि ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। भाई किस चीज का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है? सिकंदर आजम का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेइल्मी की बातें हैं। बहुत माजरत के साथ, अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ की पूरी इल्म की रवायत में हदीस को इसी जगह रखा जाता है, ऐसे ही देखा जाता है, इसी तरह परखा जाता है। ये जो चौथी सदी में आके बुखारी मुस्लिम और इन लोगों ने काम किया है, सब ने इन्हीं उसूलों का इतलाक किया है, उसमें गलती होती है। इसलिए कि किसी प्रिंसिपल के इतलाक में एक आदमी कहता है कि उसके ख्याल में ये कुरान के खिलाफ नहीं है, दूसरा कहता है खिलाफ है, तो ये बहसें जारी रहती हैं। ये भी मुसलमानों की पूरी इल्मी तारीख में है। मैं सिर्फ एक चीज में मुनफरिद हूं, और वो बात है जो असल में मदरसा फराही में आके एस्टेब्लिश हुई है, और वो बात क्या है कि हदीस में जो कुछ बयान होता है वो सीरत है, सवाने है, तफहीम है, वजाहत है, वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है। उसमें दीन के कंटेंट में किसी मुस्तकिल बिजात चीज का इजाफा नहीं होता। ये बात है जो हमने एस्टेब्लिश कर दी है, दोनों पहलुओं से कर दी है कि ना हो सकता है ना हुआ है, और कोई चीज मुनफरद नहीं, बाकी सब कुछ वही है। उसी तरह हम हदीस की सनद देखते हैं। मैं तो इस वक्त अपनी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट हदीस पर कर रहा हूं, और इस वक्त कोई 10-15 हजार हदीसों पर काम मुकम्मल कर चुका हूं, तो सब बिल्कुल उसी तरह देखते हैं, वैसे ही उसको समझते हैं, और उन्हीं 5-4 चीजों का इतलाक करके दिखाते हैं कि कुरान के मुताबिक कैसे होगी ये सुन्नत के साथ इसका क्या राबता है, अकल आम की रूह से इसमें कोई तनकीद तो नहीं होती। ये सब चीजें जैसे पुराने लोग देखते थे वैसे ही देखते हैं, सिर्फ ये है कि उस मुर्दा इल्म को जिंदा कर रहे हैं।
आखिर में जो मैं सवाल करना चाहूंगा, और इस हवाले से सवाल मौसूम भी हो रहे हैं, अब जाहिर है कि जो फिक्र आप आज पेश कर रहे हैं वो आज की टेक्नोलॉजी की वजह से भी हर जगह फैल रही है, और हमारे माशरे में एक मकालमा जो है वो हो रहा है, वो फेसबुक पे हो, वो यूट्यूब पे हो, वो टीवी चैनल्स पे हो, आपने एक इर्तआश जो है वो यकीनन पैदा कर दिया। अब मुझे जो सवाल पैदा होता है जहन में वो ये है कि अब इस दौर में, जबकि अब हम सब लोग इस एक मकालमे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, कानून साजी जो है वो मुल्क में कैसे होगी? अलामा इकबाल के अगर हम रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स देखें तो आज से तकरीबन 100 वर्ष कबल उन्होंने तो ये फरमा दिया था कि कानून साजी एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत में पार्लियामान के जरिए होगी, और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि इज्तिहाद भी जो है वो पार्लियामान करेगी, मुंतखब पार्लियामान, और उस पर यह जरूरी नहीं है कि तमाम जो मेंबर हैं वो आलिम दीन हों, वो उलमा हों, आम लोग मुंतखब होकर आएंगे और वो कानून साजी भी करेंगे और इज्तिहाद भी करेंगे। आज वो बात समझ आती है, क्योंकि जाहिर है कि किस रवैये को, किस फिक्र को मैंने मानना है बतौर एक आम मुसलमान, वो तभी मुमकिन होगा जब कोई बात मेरे दिल में उतर जाएगी, वो बात दिलों में उतरती चली जाएगी, और उसकी जो अक्सरियत के सामने शक्ल नजर आएगी उसी से कानून सासी हो। जो अक्सरियत का उसूल है, जो जमहूरियत का उसूल है, उससे फरार क्या मुमकिन है? आज हम बहुत से मजहबी तबकों से ये सुनते हैं कि जमहूरियत इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम में कानून मौजूद है, शरीयत मौजूद है, उसको बस नाफिज करने की जरूरत है, पार्लियामान का रोल बहुत महदूद है। लेकिन जो अब हमें एक मुबाहिस नजर आ रहे हैं उसमें आपकी फिक्र भी शामिल है, उसका रद्द अमल जो हमें माशरे में नजर आता है वो भी शामिल है, इन तमाम आरा के होते हुए कैसे मुमकिन है कि किसी एक मसलक या एक मदरसे की राय को हम नाफिज कर दें? कोई फरार नजर नहीं आता हमें जमहूरियत से, या कम अज कम मुझे, कि ये जमहूरियत ही है जिसके जरिए अब हमें शरीयत का भी इतलाक करना है, शरीयत को समझना भी है, इज्तिहाद की जरूरत है तो इज्तिहाद भी उसी जरिए से करना है। इस हवाले से मैं आपका रद्द अमल चाहूंगा।
बहुत अच्छा खुलासा आपने कर दिया। मैं तो यही बातें अपने उसलूब में पिछले तवील अरसे से कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि मैंने एक नुक्ता नजर बयान किया। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि इस वक्त इमाम अबू हनीफा मौजूद है, उन्होंने कर दिया, अहमद बिन हम्बल मौजूद है, उन्होंने कर दिया, शातबी इब्ने तहमिया मौजूद है, उन्होंने कर दिया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप वकला हजरात कानून के बारे में मुख्तलिफ आरा बयान कर देते हैं। ये इल्म की दुनिया की बात है, इल्म की हैसियत से हमने बयान कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आमी आदमी अपनी जिंदगी में दीन को इख्तियार करने का फैसला वो करेगा या हम में से कोई उसके बारे में करेगा? वो आदमी करेगा ना, यानी आपने फैसला करना है। आपको हो सकता है कि मेरी राय ज्यादा कवी लगे, मुमकिन है अबू हनीफा की ज्यादा कवी लगे, मुमकिन है शाह वलीउल्लाह की ज्यादा कवी लगे। तो आप अपनी जाती जिंदगी में, आपको नमाज पढ़नी है, कोई निकाह तलाक का मामला करना है, कोई मीरास तकसीम करनी है, तो आप फैसला करेंगे कि मैं किसकी राय इख्तियार करूंगा। और हर मुसलमान का वो 20 करोड़ है या 1 अरब है, वो सारे ना मुज्तहिद होंगे ना आलिम होंगे। जिस तरह कानून के मामले में हम आपके पास जाके मालूम करेंगे, आपकी बात पे इत्मीनान नहीं होगा, किसी और माहिर कानून से बात कर लेंगे, ऐसे ही हर आदमी उलमा से दीन समझेगा और जब उसकी समझ में कोई बात आ जाएगी तो वो उस पर अमल कर लेगा। तो फैसला किसने किया? वो आम आदमी ने किया। अब रियासत क्या है? उसके नज्म में दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो अल्लाह ताला आसमान से कोई आदमी मुकर्रर कर दे और ये कहे कि ये मेरा मुकर्रर करदा आदमी है, जिस तरह उन्होंने तालूत का इंतखाब किया था, तुमने इसकी बात माननी है, चलिए फैसला हो गया, वो खालिक है। इस वक्त सवाल ये है कि लोगों ने ही मुंतखब करना है कि वो किसको ये जिम्मेदारी देते हैं। किसी को किसी पर तरजीह हासिल नहीं है, क्योंकि खुदाई फैसले का दरवाजा बंद हो चुका। तो लोगों ने इंतखाब करके एक पार्लियामेंट बना दी और ये कहा कि ये अब इक्तदार का मंबा है, इसको फैसले करने हैं। वो लोग हैं जिन्होंने जिस तरह इंफिरादी हैसियत से नमाज रोजे में हम में से किसी राय का इंतखाब करना था, उसी तरह पार्लियामेंट में करेंगे। तो मैं यहां थोड़ी सी तरमीम करूंगा अल्लामा इकबाल के बसत एहतराम उनकी बात को नकल करते हुए कि ये वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फैसला पार्लियामेंट करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट बैठकर इश्तिहाद करेगी। इश्तिहाद हमेशा अहले इल्म करते हैं, वो पार्लियामेंट में भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हो सकते हैं। उन सब की बात सुनकर जिस तरह कानून साजी का अमल होता है, तो माहिरीन कानून गुफ्तगू करते हैं, वो आरा देते हैं, उनमें मुबाहसा होता है, लेकिन कानून को कानून की शक्ल कौन देता है? पार्लियामेंट देती। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी उसूल पर कानून साजी होगी। वो पार्लियामेंट है जिसको कानून साजी करनी है। पार्लियामेंट की कानून साजी का मतलब है कि गोया मुसलमानों के किसी मुल्क में उनकी अक्सरियत के नुमाइंदों ने उसी तरह किसी राय, किसी तहकीक, किसी नुक्ता नजर को इख्तियार करने का फैसला किया है, जिस तरह फर्द अबू हनीफा और शाफी में इंतखाब करता है, वैसे ही फैसला करेंगे। तो होना क्या चाहिए कि मुल्क के अंदर ये जो हमारे यहाँ है कि ये फला आदमी जाल है, फला मुजिल है, फला काफिर है, नहीं, मुकालमे की फिजा पैदा हो। जिस तरह कानूनी मसाइल में खुली बहस दुनिया में होती है, उसी तरह दीन के मामलात में भी हो। दीन के वो मामला जिनका ताल्लुक आपकी स्टेट या रियासत के, مسائل سے ہے. مثلا کوئی قانون سازی آپ نے سزاؤں میں کرنی ہے, کوئی سود کے بارے میں کرنی ہے, کوئی کسی چیز کے بارے میں کرنی ہے, اوپن ڈسکشن ہوگی, بحث ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹیاں اہل علم کو بلائیں, ان کی بات سنیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان ان سے استفادہ کریں. یہ ہو سکتا ہے وہ خود کسی مسئلے کا مطالعہ کریں باقاعدہ بیٹھ کے, اور اس میں دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے. قانون دانوں سے کہیں کہ وہ علماء کے ساتھ مذاکرہ کریں. یہ ساری بحث بغیر کسی تان و تشنیع کے, بغیر فتووں کے, بغیر تحریکوں کے, بغیر دباؤ کے ہونی چاہیے. یہ ہوگی, اس کے بعد آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جب کوئی فیصلہ کرے گی, قانون بن جائے گا, قانون نافذ ہو جائے گا, مجھ پر بھی, آپ پر بھی. اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں, ہم اس قانون کی پابندی کریں گے, عملاً اس پہ تنقید کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ اکثریت ہماری رائے کی قائل ہو جائے. اسی جمہوری اصول پر دنیا میں یہ سارا نظم چلنا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا کہ جب مسلمانوں کے حکمران موروثی بنیاد پر ہوتے تھے اور ان کو سات خون معاف تھے, وہ جو فیصلہ چاہے کر ڈالیں. ہمارے علماء جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے, تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حق پارلیمنٹ کو نہیں ہے, یہ حق ہمیں ہے. تو یہ اصل میں کشمکش یہ ہے بنیادی طور پر, کیونکہ ایک لمبے عرصے تک ہماری جوڈیشری قاضی ابو یوسف کے بعد علماء کے پاس رہی ہے, تو وہ اصل میں آپ سے جوڈیشری واپس مانتے ہیں. تو کشمکش اصل میں ان کے اور آپ کے درمیان ہے, ہمارے ساتھ نہیں.
بالکل درست آپ نے فرمایا. حمدی صاحب, یہ آخری جو میرا سوال تھا, میں ذکر کرتا چلوں, رائے عمار احمد صاحب کی طرف سے ایک سوال ملا تھا, لبنا اشرف صاحبہ ہیں ان کی طرف سے سوال آیا تھا کہ ہم ریکوری کی بات کیوں کرتے ہیں, ریکوری آف اسلامک تھاٹ کی. اسی طرح رائے عمار احمد صاحب نے پوچھا تھا کہ کون سی وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ذریعے ہم اسلام کو عملی طور پہ نافذ کر سکتے ہیں. تو ان دونوں سوالات کو ملا کر میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی, جس کا آپ نے جواب دیا, میں ممنون ہوں. اب آخر میں اتنا ہی کہوں گا, جاوید صاحب آپ ہمارے لیے روز فکر کے دریچے تو کھولتے ہی ہیں, لیکن آپ نے ہمیں گفتگو میں شائستگی اور شستگی کا آہنگ بھی سکھایا ہے. جس طرح سے آپ نے ہماری قومی زندگی میں مذہب کے, دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کا طریقہ رائج کیا ہے, وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے ہمارے دور حاضر کا, اور اس کے لیے میں بالخصوص آپ کا شکر گزار ہوں. اور آج کی اس نشست کے لیے میں بہت ہی ممنون ہوں, بہت شکریہ. یہ میرے لیے باعث سعادت تھی, اور میں امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو رہنمائی ملے گی, یا کم از کم وہ سوچیں گے اور ان کے ذہن میں بات آگے بڑھے گی. بہت شکریہ,
آپ کی بڑی عنایت, بہت محبت.